मूलाचार सबकी नहीं है, चर्चा केवल पिंड शुद्धि अधिकार की चर्चा है। चर्चा पिंड शुद्धि विषय की भाव विशुद्धि पाने को चर्चा विशुद्धि की कर लूं, पिंड शुद्धि की कर लूं, चर्चा पिंड शुद्धि की कर लूं, भाव विशुद्धि पाने को। पूरी मूलाचार की चर्चा नहीं है, पिंड शुद्धि अधिकार की चर्चा है। और वो सूत्र महावीर भगवान के सूत्र गौतम गुरु तक आए और उन सूत्रों को वट्टकीर आचार्य ने लिखा और उन्हीं सूत्रों को जो पिंड शुद्धि अधिकार संबंधित सूत्र हैं उनकी चर्चा यहां हो रही है। मंदकाचरण तो हो गया, कायस्थर करो।
सिद्ध हुआ भी द्रव्य यदि अपने लिए तैयार किया गया है तो वह द्रव्य से शुद्ध होते हुए भी अशुद्ध ही है, अर्थात वह आहार भाव से अशुद्ध है। पर के लिए बनाया गया भोजन कैसे शुद्ध है ऐसी आशंका होने पर दृष्टांत के द्वारा उसको कहते हैं। जैसे मत्स्यों के लिए किए मादक जल में मत्स्य ही मद को प्राप्त होते हैं, इसी तरह पर के लिए किए गए भोजन में यति विशुद्ध रहते हैं।
ये हो गया था यहाँ तो नहीं।
जैसे मछलियों के लिए जल में मादक वस्तु डालने पर उस जल से मछलियां ही विहल होती है, मेंढक नहीं होते। जिस जल में मछलियां हैं उसी में मेंढक भी है, फिर भी वे विपत्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए उस कारण का अभाव है। इसी तरह पर के लिए बनाए गए भोजन आदि में उसे ग्रहण करते हुए भी यति विशुद्ध है, उसके दोष से लिप्त नहीं होते हैं, अर्थात कुटुंबी जन ही अधकर्म आदि दोष से दूषित होते हैं, साधु नहीं। बल्कि वे कुटुंबी गृहस्थ जन यदि सम्यक दृष्टि है तो साधु के लिए दान के फल उसे उस अधकर्म आरंभजन्य दोष को दूर करके स्वर्गगामी और मोक्षगामी हो जाते हैं, और यदि मिथ्या दृष्टि है तो पुनः भोग भूमि को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें दोष नहीं होता है।
ठीक, ये ऐसा प्रश्न है जैसा कि आहार निर्माण में षटकायिक जीवों की हिंसा अवश्य होती है, उस हिंसा का स्वामी अधिकारी गृहस्थ होता है, साधु नहीं। साधु उस आहार को ग्रहण करते हैं, परंतु मन वचन काय कृत कारित अनुमोदना से रहित होकर आहार ग्रहण करते हैं। कृत कारित अनुमोदना करेंगे तो उस दोष संबंधी विचार अपने में अवश्य आएंगे, ये हिंसा से उत्पन्न हुआ है, यह विचार अपने में आया और फिर भी हिंसा से उत्पन्न हुआ है तो होने दो, क्या दिक्कत है। ये इस प्रकार कहते हुए भावों से अनुमोदना आदि करते हुए यदि आहार सेवन होता है तो साधु भी बंद का भागीदार है, किंतु इस प्रकार के भावों को न करता हुआ, इस प्रकार के विचार मन में न लाता हुआ, यह आहार प्रासुक है और गृहस्थ के द्वारा मुझे यह दिया जा रहा है। इतना ही समझते हुए यदि आहार ग्रहण करता है तो साधु दोष का भागीदार नहीं है, इसीलिए साधु को उस आहार को ग्रहण करने के पश्चात भी जिस आहार में षटकायिक जीवों की हिंसा हुई है उसको ग्रहण करने के पश्चात भी मोक्ष की सिद्धि वो कर लेते हैं। और सभी तीर्थंकरों ने गृहस्थ के द्वारा बनाए गए इस प्रकार के आहार को ग्रहण करके ही निर्वाण को प्राप्त किया है। तो यदि हिंसा का दोष होता तो निर्वाण की उपलब्धि नहीं होती, यानी घाती कर्मों का क्षय ही न होता। तो कोई ना कोई रास्ता है उसमें निकलने का, आहार ग्रहण करते हुए भी साधु बंध से बचकर आश्रव और बंध तत्वों को रोककर संवर और निर्जरा करते हुए संपूर्ण निर्जरा से या घाती कर्मों की निर्जरा से केवल ज्ञान को या समस्त कर्मों की निर्जरा से मोक्ष को पा लेते, प्राप्त कर लेते। तो साधु के लिए यह सावधानी दी गई है कि साधु बंध से कैसे बच सकते हैं, षटकायिक जीवों की हिंसा से उत्पन्न आहार ग्रहण करने के बाद भी वो दोषी क्यों नहीं है। तो कहते दोषी इसलिए नहीं, वे अपने मन से प्रासुक हैं, इन्हें उनका चित्त प्रासुक है, उनकी आत्मा दूषित नहीं है, हिंसा से युक्त नहीं है, कृत कारित अनुमोदना संबंधित जो कुछ भी परिणाम होते हैं होना चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, इसलिए साधु निर्दोष है और उसका निर्माण करता गृहस्थ दोषपूर्ण है। और गृहस्थ अवस्था को छोड़कर इसलिए साधु अवस्था को पाए बिना निर्वाण या केवल ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है, यह सिद्धांत है। हिंसा अधर्म है, अहिंसा धर्म है। हिंसा जब जीवन में दिखती है तो हम उसका त्याग करने का विचार करते हैं कि उस हिंसा से हम कैसे बचे, यह हिंसा अपने जीवन में से कैसे छूटे, इस प्रकार विचार हमको आता रहता है। तो उपाय भी सोचता है कि किस प्रकार छोड़ा जाए। तो ये ध्यान में आता है कि इससे कृतकारित अनुमोदना से ही हम बच जाएंगे तो दोष नहीं लगेगा, और दोष नहीं लगेगा तो आत्मा संयमी रहेगा, और संयमी रहेगा और संयम पूर्वक यदि तप करेगा तो घाती कर्म नष्ट होकर केवल ज्ञान होगा। संयम ही धारण नहीं करेगा और संयम के बिना तप धारण करेगा, बाह्याभ्यंतर 12 प्रकार के तप, 6 बहिरंग तप और अंतरंग 6 तप ऐसा ग्रहण करेगा तो केवल तप करने मात्र से कर्मों की निर्जरा तो होती है पर संवर नहीं होता। तप निर्जरा का कारण है और तप की परिभाषा है इच्छा निरोधो तपः। किसी भी प्रकार से पर वस्तुओं में मन वचन काय से इच्छा न करना, काय से भी इच्छा नहीं करना, मन से भी इच्छा नहीं करना और वचन से भी इच्छा नहीं करना। तो मन वचन काय कृतकारित अनुमोदना से भी इच्छा नहीं करना, तो आत्मा परिशुद्ध भावों से प्रासुक होती है, उस प्रासुक भावों से कर्मों की निर्जरा होती है और कर्मों की निर्जरा से केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। इसलिए साधु दोष का भागीदार नहीं, बल्कि जो दोष का कर्ता गृहस्थ है वह गृहस्थ सोचता है कि मैं दान दे करके भी कर्मों का आश्रय करता हूं और ये कर्मों से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये अगर विचार आता है तो वह गृहस्थ नहीं रहता, फिर उससे बचना चाहता है आश्रम और बंध से, हिंसा से और हिंसा रूप उस अधर्म से बचना चाहता है, तो वह श्रमण बनता है या श्रावक बन के रहेगा। और श्रावक बन करके ही ये सोचेगा तो नहीं, षटकायिक जीवों की हिंसा से तो पाप होता है और हमको दान नहीं देना है। क्यों? दान देने के लिए आहार पकाना पड़ेगा, दान देने के लिए आहार पकाना पड़ेगा और आहार पकाने पर मुझे पाप लगेगा। हाँ, अब दान ही नहीं देंगे तो पाप भी नहीं लगेगा, इसलिए दान भी नहीं देना अपने को, ऐसा भी विचार आ सकता है। आता है? आ सकता है कह रहे हम तो, आता है तो गलत है, आ सकता है यानी प्रश्न उठ सकता है ऐसा। तो इस प्रश्न का समाधान भगवान ऐसा करते हैं कि श्रावक हो तो दान के लिए हिंसा मत करो, ये निर्देशन दे दिया उनको। दान के निमित्त से हिंसा करने से बचाया है, पर दान से नहीं बचाया। दान तो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम्हारा धर्म है, वो दान देगा तो दान देते समय जो आहार निर्माण में दोष लगा है वो धुल जाएगा, परंतु वह दान अतिथि के उद्देश्य से मैं ये देऊंगा, अतिथि को देऊंगा ऐसा कहकर पदार्थों को पकाया, अन्न पकाया, तो इस विधि का ही निषेध आ रहा है भगवान की तरफ से। इस विधि से पकाओ मत कह रहे हैं ना, तो ऐसा विचार करना व्यर्थ हो गया कि मुझे दान देने के लिए पकाना पड़ता है और दान देते समय मुझे दान के लिए जब पकाता हूं तब पाप लगता ही है, इसलिए दान नहीं दूंगा तो पाप भी नहीं लगेगा, दान के लिए मुझे पाप करना ही नहीं पड़ेगा तो पाप भी नहीं लगेगा। ऐसा यदि वह कोई विचार करता है तो वह विचार ही व्यर्थ है, इसलिए व्यर्थ है कि भगवान ने पहले से ही कहा है कि दान के निमित्त से आहार को मत पकाओ, भोजन मत बनाओ। और फिर दान कैसे करें? तो स्वयं के लिए तो आप पकाते ही हो, क्या स्वयं को भी पकाने से पाप लगता है इसलिए स्वयं को भी नहीं पकाओगे? स्वयं तो खाते ही है और खाना ही पड़ेगा। गृहस्थ का पाप तो छूट ही नहीं सकता, गृहस्थ भी हम बने रहें और पाप से भी बचे, दोनों एक साथ संभव है क्या? नहीं है। ये कब संभव है? श्रमण बनने पर, साधु बनने पर ही भोजन निर्माण करने के दोष से आप पाप से बच सकते हैं। तो जो पाप से बचे हैं और श्रमण बने हैं उनके प्रति भोजन मत पकाओ, दान देने ही तो हिंसा मत करो, यहां तक कि पानी भी गर्म मत करो, यहां तक कि इधर की वस्तु को इधर उठाते समय ये दिमाग में विचार आया है कि इस गर्म बर्तन को इधर से इधर रख रहा हूं क्योंकि वह अतिथि को यहां रख करके देना है, यहां रख करके देना है, और यहां रखाना जब तक अतिथि को नहीं दूंगा तब तक इस स्थान से मैं भोजन नहीं करूंगा, इस स्थान में रखे हुए भोजन को मैं नहीं करूंगा, तो अतिथि का उद्देश्य हो गया, पर्टिकुलर स्थान हो गया, उस स्थान में रखने का संकल्प हो गया, और उठाकर रखने का भी उद्देश्य, ये भी नहीं करना है ये कह रहे हैं। कहां तक, कितना डीप ले गए आपको, किस किस से बचाए? यहाँ तक इससे भी बचाया कि एक बर्तन में जो अभी अभी नए लाए हैं श्रावक, और वह बर्तन नया है, उस बर्तन को देखने से ऐसा विचार आया कि पहले तो इस बर्तन में जो भोजन रहेगा, पहले मैं साधु को भोजन कराऊंगा, बाद में मैं करूंगा। तो बर्तन में भी उद्देश्य साधु का नहीं होना चाहिए, ये कहा।
इतना पूरा पाप पाप कह रहे हैं, अब आहार देने का भावना बाहे तो क्या उसने हाँ भावना बाहे तो महाराज का आहार अच्छा हो, सुबह उठ करके 10 बजे हाथ जोड़ करके महाराज का आहार अच्छा हो जाए, पूरे इतना पाप है तो पुण्य पुण्य हो गया ना।
हाँ, पाप से बचने के लिए भी ऐसा ही सोचा जा सकता है कि अनुमोदन ना करने से कोई पाप भी नहीं होगा और पुण्य भी लगेगा दान देने का। दान देने वाला जो पुण्य का बंद करता है वही पुण्य बंद मुझे भी होगा, ऐसा सोचकर यदि अनुमोदना पर डिपेंड रहे तो भी वह ठीक नहीं है। भगवान कहते हैं आपने अपने लिए जो पकाया है, जो रोज पकता है, वह यदि शुद्ध हो और शुद्धि पूर्वक खुद के लिए पकाया हो तो उसी में से कुछ भाग अतिथि के लिए देना, यह अतिथि समविभाग व्रत कहलाता है। अतिथि समविभाग व्रत यही है, अतिथि के उद्देश्य से पकाऊंगा और उसमें मैं भी खाऊंगा और अतिथि को भी दूंगा, ये भाव दोष है, अज्ञान है। ये अतिथि के लिए पका रहा है और फिर क्या कह रहा है उसी में से मैं खाऊंगा, ये उल्टी सोच है। इससे उल्टी होना चाहिए क्या, मैं खुद के लिए शुद्ध भोजन तैयार करूंगा, अतिथि को पड़गा करके उनको भी शुद्ध भोजन समिभाग करके भोजन देकर मैं भी भोजन करूंगा, अतिथि को भी कराऊंगा। तो अतिथि को मैं भोजन कराऊंगा ऐसे विचार में कोई दोष नहीं है, किंतु अतिथि को भोजन पकाऊंगा इस विचार में सब प्रकार के दोष, जो 16 दोष हैं सभी आ जाएंगे। कई लोगों को ये प्रश्न होता है ऐसा क्यों कहा है, अतिथि के उद्देश्य से पकाना नहीं चाहिए, इससे क्या लाभ है, नहीं पकाते हैं तो, पकाते हैं तो अच्छा ही है ना, उनको देना है पका रहे हैं, ऐसा विचार भी आता है। एक ने किसी ने पूछा था शुरू शुरू में, ये सब उद्देश्य दोषों से इतने सारे 16 दोष ये व्यर्थ हैं, ऐसे करने से क्या लाभ है, अतिथि को तो आहार कराना ही पड़ता है, गृहस्थ को कराना ही पड़ता है, आए हैं अतिथि तो क्या भोजन दिए बिना खाएंगे, पर अतिथि के लिए बनाएंगे और उसमें से खुद भी खाएंगे, अतिथि को भी देंगे, इसमें क्या दोष है, ऐसा कहने लगे। ये भी एक प्रश्न है ना तो इसका क्या उत्तर है, हाँ, भगवान ने उसको औद्देशिक दोष कहा है, दोष कहा है उसको, गुण नहीं कहा। और इससे उल्टा विचार करो तो भी आहार आप दे सकते, मैं अपने लिए भोजन पकाऊंगा, खुद के लिए जितना चाहिए उतना ही पका करके रखूंगा और उसमें से अतिथि समीभाग करूंगा, इस प्रकार यदि विचार करता है तो दाता औद्देशिक दोष का भागीदार नहीं है, दान देने पर उद्दिष्ट दोष उनको नहीं लगेगा। और त्यागी भी उस भोजन को ग्रहण करेंगे तो उनको भी औद्देशिक दोष नहीं लगेगा। यदि त्यागी उस आहार को, जो आहार दाता ने त्यागी के उद्देश्य से बनाया है, त्यागी को पता लगने पर कि त्यागी के लिए बना हुआ है, पता लगने पर यदि त्यागी के द्वारा वह ग्रहण हो गया तो त्यागी को भी दोष लगेगा, और त्यागी को पता नहीं है और त्यागी ने ले लिया और गृहस्थ ने उद्देश्य पूर्वक ही बनाया था, तो त्यागी को आहार लेते समय उनके भाव प्रासुक थे, ये मेरे लिए बनाया है, ऐसा कोई उनके मन में दोषपूर्ण विचार नहीं थे, इसलिए ये भाव प्रासुक आहार है। भाव प्रासुकता है, भाव यदि प्रासुक है तो आहार भी प्रासुक ही है, हालांकि वो उद्देश्य पूर्वक पकाया है तो भी वो प्रासुक है। तो उस समय में ये बताते हैं कि साधु दोष का भागीदार नहीं है, आहार यद्यपि दूषित है लेकिन साधु उसका भागीदार नहीं है, दोष का भागीदार नहीं है, क्योंकि साधु को ये पता नहीं है कि यह उद्देश्य पूर्वक बना हुआ है या नहीं। इस परिस्थिति में जब तक आहार नहीं हुआ तब तक उसमें भाव प्रासुक होने के कारण दोष से मुक्त है, ऐसा बताया जाता है। यही भाव प्रासुक की चर्चा सूक्ष्मतः इन चार लाइनों में उन्होंने किया है। एक बार और पढ़ लेते।
जैसे मछलियों के लिए जल में मादक वस्तु डालने पर उस जल से मछलियां ही विहल होती है, मेंढक नहीं होते।
हाँ,
जिस जल में मछलियां हैं उसी में मेंढक भी है, फिर भी वे विपत्ति को प्राप्त नहीं होते हैं, क्योंकि उनके लिए उस कारण का अभाव है। इसी तरह पर के लिए बनाए गए भोजन आदि में उसे ग्रहण करते हुए भी यति विशुद्ध है, उसके दोष से लिप्त नहीं होते हैं, अर्थात कुटुंबी जन ही अधकर्म आदि दोष से दूषित होते हैं, साधु नहीं।
तो यहाँ पर के लिए बनाए हुए भोजन की चर्चा है, वैसे गृहस्थ तो स्व के लिए बनाता है ये निर्दोषता है, पर के लिए बनाए रखता है। औद्देशिक चार प्रकार का बताया था ना, पर के लिए बनाना, कुदेव देव आदि के लिए बनाना, देव नैवेद्य बोलते हैं ना, वो भी औद्देशिक, पर के लिए पका के रखना वो भी औद्देशिक, देव के लिए और अन्य साधु के लिए और निर्ग्रंथों के लिए, नहीं वो तो वो आ गए ना पहले नंबर में, पहले इसमें आ गए वो, पर के लिए पकाना ही वो पंगत है, स्व के लिए नहीं होता है, पर के लिए पका के रखा है और साधु के आने पर के भोजन को देना, यदि ऐसा कुछ हुआ है तो साधु दोष का भागीदार नहीं है, क्योंकि साधु को वो पता नहीं है इसलिए दोष का भागीदार नहीं है। तो साधु को दोष लगे या न लगे, पर श्रावक का यह कर्तव्य होता है कि साधु के उद्देश्य या पर के उद्देश्य या देव आदि के उद्देश्य या अन्य निर्ग्रंथों के उद्देश्य पका करके रखा हुआ भोजन औद्देशिक है और ऐसा पकाना नहीं चाहिए, ये यदि गृहस्थ को ज्ञान है पता है तो वह वैसा पकाएगा भी नहीं। जिसके पास ज्ञान होता है वह पकाता नहीं है, जिसके पास ज्ञान होता है वह पकाता नहीं है, और जिसके पास ज्ञान न हो तो पका भी देता है। परसों के दिन ऐसा ही हुआ, एक चौके में आहार होने के बाद हमने पूछा, हमने एक जन को पूछा कि ये भोजन किसके लिए पकाया था, तो शुरू में उन्होंने ठीक कहा था कि हम सब लोगों को पकाया है, जो यहां चौके में है पड़गाया है, सब लोग शुद्ध भोजन करेंगे इसलिए पकाया है। तो हमने कहा फिर पूरा आप लोगों को ही पकाया था, तो उन्होंने कहा तो हमारे लिए बिल्कुल कुछ भी नहीं पकाया, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं सभी आपके लिए ही पकाया। उनको लगा कि शायद यही विधि होती हो कि महाराज के लिए भी पकाना पड़ता है, इसलिए उन्होंने कहा नहीं नहीं आपके लिए भी पकाया है। तो ये अज्ञान अवस्था में हाँ डर से भी हो जाता है, डर से हो जाता है। आगे
बल्कि वे कुटुंबी गृहस्थ जन यदि सम्यक दृष्टि है तो साधु के लिए दिए दान के फल से उस अधकर्म आरंभजन्य दोष को दूर करके स्वर्गगामी और मोक्षगामी हो जाते हैं।
हाँ वो यदि तैयार किया हुआ गृहस्थ के द्वारा वो तो अधकर्म से तो है ही दूषित, परंतु साधु का उसमें कोई कृतकारित अनुमोदना इत्यादि का संबंध आता है तो साधु के लिए भी क्या हो जाता है वह अधकर्म दोष से युक्त हो जाता है। भोजन कृतकारित अनुमोदना से कुछ हुआ तो, और वह यदि नहीं है और उस अधकर्म से उत्पन्न आहार, वो तो अधकर्म से ही उत्पन्न है श्रावक की अपेक्षा से, पर साधु ले रहा है तो भी उसमें साधु के मन में कृतकारित अनुमोदना के जो भाव हैं वो न होने से, साधु के भाव प्रासुक होने से वो दोष का भागीदार न होते हुए वो कर्म निर्जरा का भागीदार है, कर्म बंद का नहीं, ऐसा समझाया है। दान का फल
साधु के लिए दे दान के फल से उस अधकर्म आरंभ जन्य दोष को दूर करके स्वर्गगामी और मोक्षगामी हो जाती है। और यदि मिथ्य दृष्टि है तो पुनः भोग भूमि को प्राप्त कर लेते हैं, इसीलिए उन्हें दोष नहीं होता है।
ये चर्चा डिटेल अनेकों ग्रंथों में है, यहां संक्षिप्त है। वैसे दान का फल बता रहे हैं कि यदि कोई मिथ्या दृष्टि जीव सुपात्रों में दान देता है, सुपात्र तीन प्रकार के जगन मध्यम और उत्तम, इन तीन सुपात्रों में से किसी को भी दान दे दे, किसी को भी, तो जीव देने वाला दाता यदि मिथ्या दृष्टि हो और दान दे रहा हो तो भी वह सुभोग भूमि में जाएगा, सुभोग भूमि उसका फल है। यदि मनुष्य आयु को बंद किया या तिरंच आयु को बंद किया ऐसा दाता तिरंच भी बनेगा तो सुभोग भूमि का तिरंच बनेगा, और मनुष्य बनेगा तो सुभोग भूमि का मनुष्य बनेगा, और यदि देवगति में जाएगा तो वैमानिक देव बनेगा, भवनत्रिक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। हाँ मिथ्या दृष्टि जीव, मिथ्या दृष्टि जीव सुपात्र दान के फल स्वरूप वह उस दान फल से ही वैमानिक देव बनता है, और यदि सम्यक दृष्टि हो तो वह यदि क्षायिक सम्यक दृष्टि रहता है और क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले ही मनुष्यायु का बंध किया हुआ होता है, मनुष्यायु का बंध मनुष्य को पहले गुणस्थान में ही होता है, मनुष्यायु का बंध एक मनुष्य को पहले गुणस्थान में ही केवल होता है, दूसरे गुणस्थान में भी कर सकता है, तीसरे में तो करेगा नहीं और चौथे में तो करेगा ही नहीं। सम्यक दृष्टि मनुष्य यदि चार में से कोई आयु का बंद करता है तो वो केवल देवायु का ही बंद करता है, चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य तीन आयु का बंद नहीं करेगा। हाँ तो सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थानवर्ती मनुष्य कोई है और उसने मनुष्यायु का बंद करने के बाद चतुर्थ गुणस्थान को प्राप्त किया है, तो वह कौन सा मनुष्य बनेगा मरण करके? तो सुभोग भूमि का मनुष्य बनेगा, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, सुभोग भूमि में ही जाएगा। किसमें दान दे रहा है? किस सतपात्र दान दे रहा है, और वो मिथ्या दृष्टि था, वो सुपात्रों में दान दिया, वो क्या बना? वो भी सुभोग भूमि का ही मनुष्य बना। यदि तिरंश भी बना तो सुभोग भूमि का ही तिरंश बना, यदि देव बना तो वैमानिक देव बना, परंतु सम्यक दृष्टि मनुष्य चौथे गुणस्थान वर्ती ये सुपात्रों में दान दे रहा है, तो नियम से देव गति का बंद करके देवायु में वैमानिक देवों में ही जन्म लेगा। ये किस परिस्थिति में? किसी भी आयु का बंद नहीं किया हो और सम्यक दृष्टि हो, चौथे गुणस्थान वर्ती हो, तो आगामी आयु को बंद करेगा तो केवल देवायु का ही बंद करेगा। और यदि पहले से ही मनुष्य आयु का बंद करके बाद में सम्यक दृष्टि बनकर चतुर्थ गुणस्थान में आया हो और फिर सुपात्रों में दान दिया हो, तो सुभोग भूमि का मनुष्य बनेगा। और यदि वही मनुष्य तिरंश आयु का पहले से ही बंद किया, सम्यक्त्व के साथ तो तिरंश आयु का बंद नहीं होता, इसलिए मिथ्यात्व के अवस्था में बंद करेगा, तिरंश आयु का बंद किया, फिर बाद में सम्यक दृष्टि बना और सुपात्रों में दान दिया, तो भी वह तिरंश गति में ही तो जाएगा, परंतु कौन सा? सुभोग भूमि का तिर्यंश बनेगा, सुभोग भूमि का यानी कर्म भूमि का तिर्यंश नहीं बनेगा, म्लेच्छ खंड आदि में जाकर के तिर्यंश नहीं बनेगा। ये हो गया सुपात्र दान का फल, सुपात्र दान का फल। अब पात्र तीन प्रकार के हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। सुपात्र के तीन भेद हैं, जगन्य, मध्यम, उत्कृष्ट, इसकी चर्चा हो गई। मिथ्या दृष्टि दाता देता है तो क्या बनता है, इसकी चर्चा हो गई। अब ये कुपात्र है, कोई मनुष्य किस गुणस्थानवर्ती? प्रथम गुणस्थानवर्ती। कोई मनुष्य प्रथम गुणस्थानवर्ती कुपात्र में दान देता है तो कहां जाएगा? कुभोग भूमि में जाएगा, सुभोग भूमि में नहीं जाएगा। ये कुभोग भूमियां कहां है? ये कुभोग भूमि कहां है? लवण समुद्र में। लवण समुद्र के दो तट हैं, इधर ढाई द्वीप का तट आता है और इधर जम्बू द्वीप का तट, और ये समुद्र गोल है, राउंड है, बीच में जम्बू द्वीप, फिर राउंड उसको घिरा हुआ जल वो लवण समुद्र, और उस लवण समुद्र से घिरा हुआ धातकी खंड, और धातकी खंड से घिरा हुआ एक समुद्र कालोदक समुद्र, कालोदरी समुद्र, और उस कालोदरी समुद्र से घिरा हुआ ये पुष्करार्ध द्वीप। इस प्रकार द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र, द्वीप समुद्र असंख्यात हैं ये, राउंड राउंड चूड़ी के आकार से। एक चूड़ी रखो वो लवण समुद्र हुआ, पहले क्या रखना? पहले तो थाली रखो क्योंकि जम्बूद्वीप में समुद्र नहीं है, पहले थाली रखो, और थाली से कुछ बड़ा चूड़ी रखो, कोई गोल आकार का वो रखो, और उसको छोड़ करके फिर एक पट्टी रखो, वो द्वीप हो जाएगा। फिर एक खाली प्रदेश बचेगा, थोड़ा छोड़ करके एक और पट्टी रखो गोल वाला, फिर थोड़ा खाली छोड़ करके फिर एक पट्टी रखो, ऐसे कितनी पट्टी रखो? एक एक दूसरे से बड़े 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 असंख्यात रखो, और जो छोड़ा हुआ ये है जो छोड़ा हुआ वो प्रदेश है वो समुद्र का प्रदेश हो गया, तो उसको रहने दो, सबका ध्यान उधर जाएगा।
दिखाएंगे
अभी रखो, दिखाएंगे ना, या विश्लेषण करते समय नजर उधर जाता है। असंख्यात द्वीप समुद्र है, परंतु कुभो भूमिया असंख्यात समुद्रों में सब में नहीं है, ये केवल दो ही समुद्र में है, पहला नंबर का समुद्र और दूसरा नंबर का समुद्र, यानी लवण समुद्र और कालोदक समुद्र, जिससे ऐसे गोलाकार से समुद्र है, पानी ठहरा हुआ है। तो इस ये तट और ये तट दो तट बनेंगे, तट दो बनेंगे, इस तट पर 24 बीच भी ऐसा 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 एक 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 एक, एक। बाह्य तट में 24 कुभो भूमि और अभ्यंतर तट में यानी जम्बूद्वीप के तरफ, ये जम्बूद्वीप हो गया इसके चारों ओर, और वो कालोदती कौन सा धातकी खंड है, तो उस तट के किनारे पर ऐसे 24, तो ये 24 और 24 दोनों तटों पर 48 कुभो भूमि लवण समुद्र में है, और इसी प्रकार दोनों तट को लेकर के कालोदक समुद्र में भी है राउंड आकार से, इधर 24 और उस तट बाह्य तट में 24 ऐसे लगातार, तो वो 24 24 48, ये 48 और वो 48, लवण समुद्र के 48 कुभो भूमि और कालोदक समुद्र के 48 कुभो भूमि सब मिलकर के 96 अंतरद्वीप है, अंतरद्वीप भी कहते हैं इनको और कुभो भूमि भी बोलते हैं, दो नाम है इसके, अंतरद्वीप और कुभो भूमि, ये द्वीप नहीं है अंतरद्वीप। अंतरद्वीप किसको कहेंगे, जो समुद्र के बीच में होते हैं उनको अंतरद्वीप कहते हैं, और जो समुद्र के बीच नहीं होते बल्कि समुद्र से घिरे हुए होते हैं उनको द्वीप बोलते हैं, समुद्र को ही घिरा हुआ द्वीप वो द्वीप है, और समुद्र के बीच में रहने वाले टापू की तरह जो रहते हैं उनको अंतरद्वीप बोलते हैं। तो ऐसे कुभो भूमियां 48 96 हैं, 48 48 96, तो इन कुभो भूमियों में कौन जन्म लेते हैं, कुपात्र दान वाले मनुष्य जन्म लेते हैं। कुपात्र कौन है, कुपात्र का क्या लक्षण है, कुपात्र नहीं हाँ हाँ मिथ्या दृष्टि, हाँ मिथ्या दृष्टि रहते हैं, और क्या लक्षण है उसका कुपात्र का, नहीं नहीं वो तो है ही, मिथ्या तो हो ही गया विपरीत निवेश कहने से, और क्या विशेषता होती है, नहीं ऐसा नहीं, भाव संयम से रहित, द्रव्य संयम से युक्त और सम्यक्त्व से भी रहित, ये लक्षण कुपात्र का है। क्या बताया, भाव संयम से तो रहित है, यानी द्रव्य संयम से सहित, सम्यक्त्व से रहित, उस जीव को कुपात्र कहते हैं, और अपात्र, अपात्र भी है, तो अपात्र का क्या लक्षण, जिसके पास न सम्यक दर्शन है न द्रव्य संयम है न भाव संयम है, तीनों ही न हो वो अपात्र, जिसके पास तीनों नहीं होते वो अपात्र, और जिसके पास तीन में से एक होता है द्रव्य संयम और दो नहीं होते सम्यक्त और भाव संयम, तो वो है कुपात्र। और जिनके पास तीनों रहते हैं, द्रव्य संयम भी है, भाव संयम भी है और सम्यक दर्शन भी है, सुपात्र। तो इस सुपात्र में तीन भेद किया, मध्यम सुपात्र भी है, उत्तम सुपात्र भी है और जगन सुपात्र भी है। तो जगन सुपात्र कौन? जिनके पास द्रव्य संयम नहीं और भाव संयम नहीं, दोनों प्रकार का संयम नहीं पर सम्यक दर्शन है, वो जगन्य आवृत सम्यक दृष्टि जगन्य सुपात्र है वो। और छठे गुण पंचम गुण स्थान वर्ती प्रतिमाधारी शुल्लक ऐलक आरिका इत्यादि जिनको पंचम गुण स्थान होता है वो सब मध्यम सुपात्र में आते हैं। पंचम गुण स्थान वर्ती जीव मध्यम सुपात्र और छठे गुण स्थान वर्ती जीव उत्तम सुपात्र, जो महाव्रति होते हैं जिनके पास तीनों हैं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र, तीनों हो तो उत्तम सुपात्र, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और देशव्रत हो मध्यम सुपात्र, और महाव्रत भी नहीं देशव्रत भी नहीं, केवल सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो तो जगन सुपात्र। तो गुण और दोषों के आधार से पात्र का विभाजन किया गया है, जिसमें तीन में से एक भी गुण न हो अपात्र है, अपात्र है। जिनके पास तीन गुणों में से सम्यक दर्शन नहीं सम्यक ज्ञान नहीं और चारित्र यदि है तो केवल द्रव्य चारित्र है भाव चारित्र नहीं, तो वो कुपात्र है। और जिनमें सब कुछ हो तो सुपात्र है। तो दोष के आधार से भी पात्र का कथन किया और गुण के आधार से भी पात्र का कथन किया। तो कुपात्र में दोष क्या है?
भाव संयम नहीं है।
हाँ, भाव संयम नहीं है, ये दोष है।
सम्यक दृष्टि नहीं है।
हाँ, सम्यक दृष्टि नहीं है। हाँ, भाव संयम का न होना और सम्यक्त्व का न होना ये दोष है उपात्र में, ये दोष है, ये दोष है। सम्यक्त्व का न होना और भाव संयम का नहीं होना ये दोष है। और द्रव्य संयम तो है तो उतना गुण उसके पास है, परंतु भाव संयम से रहित द्रव्य संयम जो होता है वो गुणों की कोटि में रखा नहीं जाता। द्रव्यलिंग यानी मिथ्या चारित्र है वो।
हाँ,
सम्यक्तु से रहित और भाव चारित्र से रहित के द्रव्य चारित्र को मिथ्या चारित्र कहा जाता है। भगवान ने उपदेश दिया है कि ऐसा चारित्र सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आएगा जिस चारित्र के साथ न सम्यक्तु है न भाव संयम है, केवल द्रव्याचरण है। पांच महाव्रत, पांच समिति, पांच इंद्रिय निरोध, तीन गुप्ति नहीं, पांच इंद्रिय निरोध, छह आवश्यक और सात शेष गुण, अट्ठाईस मूल गुण सभी एक पक्ष के होते हैं, द्रव्य पक्ष के, द्रव्य पक्ष होता है। द्रव्य अट्ठाईस मूल गुण रह सकते हैं, भाव अट्ठाईस मूल गुण नहीं रहेंगे। या चारित्र को यूं समझो कि तेरह प्रकार का चारित्र है, पांच महाव्रत, पांच समिति और तीन गुप्ति, पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति, ये द्रव्य रूप भी होते हैं और भाव रूप भी होते हैं। द्रव्य महाव्रत पांच प्रकार के, उसी प्रकार भाव महाव्रत भी पांच प्रकार के, द्रव्य समिति पांच प्रकार की, उसी प्रकार भाव समिति भी पांच प्रकार की, और तीन गुप्ति, द्रव्य गुप्ति तीन प्रकार की और भाव गुप्ति तीन प्रकार की। तो भाव भाव को माइनस किया जाए, तेरह माइनस और तेरह प्लस, द्रव्य द्रव्य तेरह है, तो वह द्रव्य मात्र क्या सम्यक द्रव्य चारित्र कहलाएगा?
नहीं
नहीं,
नहीं।,
नहीं कहलाएगा, द्रव्यचरित नहीं कहलाएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं, एकदम आपको पकड़ में आएगा, नारियल है, लाए हैं दुकान से, लाए हैं, जब फोड़ के देखा तब पता चला, अरे रे इसमें तो जो खोबरा सब सड़ गया है, खराब हो गया है, काला पड़ गया है। अब पैसा कितना दिया?
पूरा
पूरा दिया, लेकिन निकला क्या? खराब निकला। लेकिन आप टेस्ट किए बिना लाए, उसका टेस्ट भी करना चाहिए ना, टेस्ट किए बिना ही उसको लाए इसलिए वो खराब निकला, और टेस्ट करके लाते तो खराब निकलता नहीं था। तो टेस्ट करने के लिए भी कुछ हमको तत्संबंधी ज्ञान होना चाहिए कि नहीं, कैसे टेस्ट किया जाता है। उतना ही ज्ञान न हो तो आप अटक जाएंगे, अपने पैसे को खो जाएंगे। हाँ, तो टेस्ट किए बिना कभी भी दान नहीं देना। ये जो भगवान ने उपदेश दिया है वो क्यों दिया? कई लोग ऐसा सोचते हैं, पिंछी कमंडलू और वेश को देख करके अपने को काम कर लेना चाहिए, ज्यादा उलझन में नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसा यदि कर सकते हैं और करना चाहिए, तो भगवान इन तीन प्रकार के पात्रों का कथन क्यों करते? जब दिया जा सकता है तो पात्रों के कथन की क्या जरूरत क्या है? भगवान उपदेश नहीं भी देते तो हम तो दान देने वाले ही थे। और पिंछी कमंडलू वेश मात्र को देख करके हम तो देने वाले ही थे, पर भगवान ने उपदेश दिया, ये व्यर्थ ही दिया है ना। फिर
परीक्षा करने के लिए,
हाँ, ये विवेक बुद्धि, ये तीनों कथन क्यों किया? आपको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, उनके गुण लक्षण मालूम हो इसलिए किया, या ऐसा ही ज्ञान होने के लिए किया और देते समय आप किसी को दे दो चल जाएगा? तो यदि ऐसा समझ करके हम यदि गलती से भी टेस्ट के बिना कुपात्र में आहार दान देते हैं तो उस जीव को क्या फल मिलता है, यही तो प्रश्न उठा है। तो उस जीव को कुभोग भूमि में जन्म लेना पड़ता है, और टेस्ट किए बिना आहार कौन देता है? तो जीव जो अज्ञानी है, ज्यादा सोचने को मजबूर नहीं होता और उसके झंझट में नहीं पड़ता, तो अज्ञानी जीव करता है। तो अज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि होता है, मिथ्या दृष्टि, मिथ्या दृष्टि जीव में विवेक नहीं रहता, किस समय क्या करे नहीं क्या न करे विवेक नहीं रहता, और विवेक न होने के फलस्वरूप वो दे बैठता है कुपात्र में या अपात्र में, सबको समान समझ करके। कई तो अज्ञानी जो ऐसे रहते हैं, सब पात्र ने सब पात्र समान समान विनय करता, तो ये विनय मिथ्या तो हो गया।
कुपात्र को कुगुरु बोल सकते हैं? कुपात्र को कुगुरु कह सकते हैं?
कुपात्र को कुगुरु का तात्पर्य यही है, कुत्सितो गुरु कुगुरु। कुत्सित का मतलब जो गुणों से कमी है, गुणों से रहित या गुणों में कमी है, तो उसी को कुगुरु कहेंगे। यानी कुगुरु का लक्षण कहां से बनेगा कि वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये तीनों मोक्ष मार्ग, इन तीनों का मिलन जिस गुणस्थान से होता है वो कौन सा गुणस्थान? छठवा। तो छठे में तो भाववृत, द्रव्यवृत, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सभी रहते हैं, तो उनको गुरु के कोटि में तो रखा ही जाता है। नमोकार मंत्र में पांच पद है, उनमें से तीन पद वाले वो कौन? आचार्य, उपाध्याय और साधु। तो ये गुणस्थान इनका कौन सा है? छठवा सातवा, परंतु छठा सातवा न होकर किसी साधु का पांचवा है और वेश बराबर यही है, पिंछी कमंडलू दिगंबर दिगंबरत तो सब कुछ है, तो फिर उनका गुणस्थान कौन सा जो एक गुणस्थान नीचे आ गए, उनका गुणस्थान तो चौथे में आ गए समझ लो, पांचवे में आ गए समझ लो, एक गुणस्थान नीचे आ गए, तो वो मुनि महाराज नमोकार मंत्र में रहते हैं या नहीं?
नहीं
रहते। नमोकार मंत्र किसको स्वीकार करता है? जिनके पास तीनों रत्न हैं उनको स्वीकार करता है, जिनके पास तीनों रत्न नहीं है नमोकार मंत्र उनको स्वीकार नहीं करता। नमोकार मंत्र से निवेदन करें, क्षमा करो, हमको स्वीकार करो, हम बाद में सम्यक दर्शन ले लेंगे, हम बाद में सुधार कर लेंगे, अभी हमको अंदर ले लो, तो कोई माफ करेगा क्या वो?
नहीं।
यदि नमोकार मंत्र माफ करता है कोई बात नहीं, बाद में आप सम्यक दर्शन धारण कर लेना, तब तक छठे गुणस्थान में बैठना और मोक्ष मार्ग पर रहना। यदि नमोकार मंत्र स्वीकार कर ले उस आत्मा को है? तो फिर कर्म भी स्वीकार करेंगे, पाप कर्म कहेंगे, आप साधु हैं, आप क्षमा मांग रहे हैं, इसलिए अभी हम नहीं बंधेंगे आपसे, हम बाद में बांधते हैं, अभी आप छठे गुणस्थान में रहो, बाद में हम बंध जाएंगे। तो कर्म कभी माफ करते हैं क्या?
नहीं
करते हैं, हम जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे, ये सिद्धांत है। जैसा करेंगे वैसा भरेंगे का मतलब उसका फल पाएंगे ही। तो अज्ञानी जीव जिसको विवेक ज्ञान नहीं है उनका गुणस्थान कौन सा होता है? जो सबको समान समझता है, पहला गुणस्थान होता है। तो जो कुपात्र आदि में दान देता है, ये कुपात्र है ऐसा समझ में आने के बावजूद भी दान देता है, लक्षण के आधार से समझ में भी आ रहा है कि ये कुपात्र है, फिर भी दान दिया,
वो भी पहला गुणस्थान में है।
हाँ, दान दिया
तो
विनय मिथ्यात्व तो होता ही, उसके प्रति विनय आदि भक्ति आदि करनी पड़ती है, नवधा भक्ति करनी पड़ेगी, तो भक्ति पूर्वक दिया तो सही, तो कर्म माफ करेगा क्या? ज्ञात भाव से अज्ञात भाव से किए गए कार्य कर्म बंध के कारण होते ही हैं, ऐसा सिद्धांत है। ज्ञात भाव का मतलब हम जानबूझकर दे रहे हैं, ज्ञात भाव है ये, और अज्ञात भाव का मतलब पता नहीं था अज्ञात भाव से दिया। वो भी मिथ्यात्व। तो जिनेंद्र भगवान ने इसलिए इन पात्रा पात्रों का व्याख्यान किया, क्योंकि आपको सम्यक ज्ञान प्राप्त हो, तत्संबंधी जानकारी मिले, विवेक ज्ञान पैदा हो और यथार्थ मार्ग से आप चल सके, इसलिए व्याख्यान किया है। तो ये अध्ययन करना अनावश्यक है क्या? दान देते समय अगर किसी को भी दान देने से पुण्य लगता है उसमें कुछ भी नहीं देखना चाहिए, ये व्याख्यान गलत होगा क्या सही होगा?
गलत।
और किसी किसी शास्त्र में ऐसा भी आता हो आ भी सकता है। आप जब शास्त्र पढ़ना शुरू करेंगे ना किसी एकाध शास्त्र में ऐसा भी व्याख्यान मिलेगा कि दान देते समय पात्रों की परीक्षा नहीं करनी चाहिए, टेस्ट नहीं करना चाहिए।
पंचम का
लिखा है कि नहीं? मिलेगा कोई ना कोई शास्त्र।
वो ये कहते हैं दो रोटी के लिए क्या परीक्षा कर रहे हो?
दो रोटी के लिए क्या परीक्षा?
सर ऐसे भी कहते हैं महाराज जी कि अपने घर में मेहमान आते हैं तो उनको खिलाते नहीं क्या?
तो ये हाँ मेहमान आ गए तो खिलाते नहीं क्या? उसको दया मतलब उसको उस पर हम करुणाधान समझ करके देते हैं तो क्या दोष है? इस प्रकार रास्ता निकाल करके अन्य अन्य रास्ता निकाल करके देंगे तो भी दोष लगने वाला है क्या? नहीं, दोष से बच सकते हैं क्या? अगर बच सकते हो तो देना बात अलग है। आश्रय और बंद होता ही है तो फिर बचना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बचना ही पड़ेगा, बचना ही पड़ेगा। तो पात्र की तरफ से देखो, पात्र की तरफ से जिम्मेदारी ये है कि हम यदि मोक्ष मार्ग का ये बहाना बना लिया है, धारण वेश धारण किया है, तो हमारा मूल कर्तव्य है कि हम अपने स्थान पर ही रहे, छठे गुण स्थान में रहे, ये हमारा फर्ज बनता। और श्रावक का, हम यदि श्रावक हैं तो हमारा कर्तव्य करें क्या? पात्रा पात्र का विवेक रखते हुए, पात्रा पात्र का विवेक रखते हुए आहार दान दे, ये उनका फर्ज है। और फिर ये दोनों ही अपना अपना फर्ज नहीं निभाएंगे तो फिर मोक्ष मार्ग डूबने वाला ही है और हमारा अकल्याण होना ही है। यदि साधु को पात्र का और अपात्र का स्वरूप धारण करके, लक्षण धारण करके आहार ग्रहण करे तो दाता को भी नुकसान पहुंचता है और खुद को भी नुकसान पहुंच जाता है। तो दाता की रक्षा के भाव से तो कम से कम साधु को अपने गुणों को, दोषों को दूर कर अपने गुणों को धारण कर ले तो ये भी बहुत बड़ा मतलब उपकार हो जाएगा दाता के ऊपर।
रानी ने तीर्थंकर की वंदना नहीं की थी?
हाँ,
ये तीर्थंकर हो नहीं सकते,
हो ही नहीं सकते। 25वें तीर्थंकर
रानी ने तीर्थंकर की वंदना नहीं की थी?
बिल्कुल,
विवेक से काम,
विवेक से। साधु को भी उतना ही विवेक रखना चाहिए जितना विवेक दाता दान देते समय साधु के प्रति रखता है और पात्रा पात्र के संबंधी विचार करता है। वैसे ही साधु को, साधु बनने के बाद मैं किस टाइप के गुणों को धारण कर रहा हूं, ये गुण है या दोष है, इसका विवेक क्या साधु को रहना नहीं चाहिए? साधु की जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं है? तो साधु की ही पहले जिम्मेदारी है। और साधु ठीक है तो गृहस्थ चाहे दोषी भले ही हो, मिथ्या दृष्टि क्यों ना हो, उसको सदगति मिलती है। सतपात्र को दान देने से शुभ भूमि में गया, अपूर्व भूमि से बच गया तो उसका तो कल्याण हो गया, हित हो गया उसका। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी? पात्र की। और पात्र अगर ऐसी जिम्मेदारी स्वयं का निभा नहीं रहा है तो दाता का क्या कर्तव्य है? ये दाता को सोचना चाहिए कि नहीं? हाँ, दाता बहुत सारे होते हैं और पात्र एक आध दो चार ऐसे गिनती में रहते हैं। दाता बहुत सारे रहते हैं और दाता के विचार सबके अलग अलग रहते हैं। नहीं, इतने दो रोटी देने के लिए क्या परीक्षा करना, ऐसे विचार वाले दाता भी रहते हैं। और कोई दाता ऐसा नहीं, फिर ये सब व्यर्थ हो जाएगा भगवान का उपदेश। ऐसा कह करके हम तो विवेक से काम करेंगे, ऐसा विचार करने वाले दाता भी रहते हैं। और कोई कहते हैं, कोई ऐसा भी सोचते हैं कि हमसे तो वो श्रेष्ठ है ना, वो तो वस्त्रधारी नहीं है और हम वस्त्रधारी हैं, इतना तो फर्क है, वो तो बड़े हैं। इस प्रकार सामान्य विचारों में आकर के जो अनुचित है ऐसा विचार करना, अनुचित विचार करके दान में प्रवृत्ति करता है तो वो दाता भी ऐसा विचार वाला अपना अहित ही करता है ना। उसमें विज्ञानी दाता ही हित करता है, अज्ञानी दाता जितने प्रकार के विचारधारा वाले होते हैं और अज्ञानी होते हैं, वे अपने हित का भी विचार नहीं करते और पात्र के हित का भी विचार करने की शक्ति उनमें नहीं रहती। इस प्रकार भेद को न जानते हुए जब भी वो दान आदि के कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो उस समय वो दोष के बंध से यानी कर्मों के आश्रव बंध से बच नहीं सकते। कर्म तो माफ थोड़ी करेंगे। देखो अग्नि, अग्नि क्या करती है, हमको जलाती है। अग्नि से पहला निवेदन करो, हमको मालूम है कि तुम जलाती हो अग्नि, लेकिन हम जानबूझकर थोड़ा सा अंगुली दे रहे हैं, लेकिन हम जब तक अंगुली रखेंगे तब तक जलाना मत। हमारी ये निवेदन है आपके तरफ से। अग्नि जलाएगी कि नहीं जलाएगी? वो स्वभाव नहीं छोड़ेगा। तो हमारा दान कुपात्र में या अपात्र में जाते ही कर्म का बंध जो होता है आश्रव और बंध, वो आश्रव और बंध आपको माफ करेंगे क्या?
नहीं।
आप जानबूझकर देख रहे हैं, देखते हुए भी दे रहे हैं, तो क्या माफ करेगा? आश्रव माफ करेगा आपको? नहीं करेगा, क्योंकि देते समय देना ही पड़ता है। तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी दोनों तरफ है, पहली जिम्मेदारी पात्र के तरफ से और दूसरी जिम्मेदारी दाता विवेकी हो, ये उसकी जिम्मेदारी।
सबसे श्रेष्ठ गुण दाता का विवेक ही,
दाता का विवेक ही सबसे
दाताओं को दान के बारे में समाज का बात सुनना चाहिए नहीं चाहिए ये बताइए। दाता को तो समझ में अच्छे बात है, समाज के अज्ञान लोगों के बात सुनना चाहिए नहीं चाहिए? आप तो वो कैसे सुनना चाहिए, जैसे देखो फलानी महाराज आए आप उसको नहीं लगाए, जो अच्छे महाराज होते तो उसको तो लगाते हैं, उनको ये ज्ञान नहीं है, उनको उस टाइम में क्या करना है, उनको तो दबाव में आ जाता है आप ऐसे राग द्वेष करते हैं।
वो लोग ऐसे भी हमारे महाराज का भी
अज्ञानी दाता के मन में ऐसे भाव आ जाते हैं,
आ जाता है
कि ज्ञानी दाता एक महाराज को चाहता है और अज्ञानी दाता उनको तो बिल्कुल ज्ञान ही समाप्त है, तो वो भी आए ठीक, ये भी आए ठीक, सब समान है। तो समान बुद्धि वाले दाता ये कहते हैं, ज्ञानी दाता से ये कहते हैं, आप तो राग द्वेष करते हैं, आप एक महाराज के पीछे लग गए तो उसी के पीछे लग जाते हैं। तो अज्ञानी दाता के पास विवेक ही नहीं रहता है, तो विचार की शक्ति वहां कहां है? और ज्ञानी दाता उस अविवेकी दाता के इन विचारों को देखकर सुनकर ये भी डिग गया कि सही बात है भाई, ये जो कहता है ऐसा नहीं होना चाहिए, राग द्वेष हो रहा है, ये कह करके वो भी समान देखने लग जाए, पात्रा पात्र को, कुपात्र आदि को, तीनों पात्रों को समान देखने लग जाए, तो क्या वो कर्म बंध से बच सकेगा? नहीं बच सकेगा। अज्ञानी दाता तो बच सकता ही नहीं, पर ज्ञानी दाता के मन में भी अगर ये आ गया तो वो भी नहीं बचेगा, वो भी नहीं बचता,
एक शरीर के हो गए दोनों,
एक शरीर के हो जाएंगे दोनों एक शरीर।
ज्यादा कष्ट होगा।
हाँ,
इसलिए ज्ञानी दाता को ज्ञानवाणी का सुनना है, ज्ञानवाणी का नहीं।
और अज्ञानी दाता की विशेषता एक और सुन लो, अज्ञानी दाता के पास टेस्ट करने की बुद्धि तो बिल्कुल होती ही नहीं, वो तो किसी भी शास्त्र ग्रंथ को उठा करके पढ़ लेता है और उस ग्रंथ में अगर ये आ गया एक दो लाइन पकड़ के बैठता है कि पात्रा पात्र की परीक्षा क्या करना, ऐसा उन्होंने वहां पर पढ़ लिया तो कहता देखो ये शास्त्र में भी कह रहे हैं कि देने के लिए बताया जा रहा है, परंतु ऐसे वचन जिन ग्रंथों में लिखा हुआ है क्या उसको जिनेंद्र भगवान की वाणी समझेंगे या वो ग्रंथ करता ग्रंथ जो लिख रहा था उनकी वाणी समझेंगे?
ग्रंथ करता है।
तो भगवान की वाणी अगर होती तो भगवान या तो कुपात्र सुपात्र का विवेक का ज्ञान नहीं देते, क्योंकि सब जगह कुछ भी करो बंद नहीं होगा, दो रोटी तो देना है आपको, बंद नहीं होने वाला है। तो भगवान इसका व्याख्यान ही नहीं करते, लक्षण ही नहीं बताते कि कुपात्र का लक्षण क्या है, अपात्र का लक्षण क्या है, सुपात्र कौन है, कुछ बताते ही न थे। तो यदि भगवान बताए न होते तो ये जो कर्ता ग्रंथ कर्ता कह रहे हैं कि दो रोटी देने के लिए क्या टेस्ट करना, तो इनकी बात सही होती। परंतु उनकी बात इसलिए गलत है कि भगवान ने ऐसा नहीं कहा है, ये इनके वचन है, छद्मस्त वचन है, इसलिए ये वचन ठीक नहीं है। ये विचार अज्ञानी दाता कर नहीं सकता, उनके पास विचार करने की कैपेसिटी नहीं है, इतना विवेक नहीं है, इतनी समझदारी नहीं है। आगे पीछे कुछ भी दोष कैसे आता है, कैसे नहीं आता, संवर क्या, आश्रव क्या, निर्जरा क्या, बंद क्या, कुछ भी नहीं सोचता, उनको देने से मतलब नहीं। वो उतारू हो जाता है कि हमको तो देव केवल देने से मतलब है, उनकी श्रद्धा है कि देने मात्र से पुण्य का बंध होता, तो होता है पुण्य का बंध। ये अज्ञान है या ज्ञान है? अज्ञान है। देने मात्र से पुण्य का बंध होता तो सुबह भूमि में जाते। अब कुबो भूमि में जाकर के जन्म लिया, तब पता चला कि ओहो मैंने ऐसा किया इसलिए यहां आ गया, पहले ही सोच लेता तो बहुत अच्छा था, परंतु मैं दुर्बुद्धि, देने से पहले टेस्ट नहीं किया और इसलिए यहां आया। और जो पात्र थे वो पात्र भी ऐसा ही कहते थे कि दो रोटी खाने के लिए कोई टेस्ट नहीं करना चाहिए। तो उस पात्र ने समझाने के बाद ही उस पात्र को हमने दिया ऐसा हुआ वो पात्र ने कहा है इसलिए दाता ने भी दिया, और दाता के द्वारा देने पर उसका जब फल मिलता है, रिजल्ट मिलता है, तो पास या फेल, फेल। फिर दाता को बुद्धि आती है वहां जाकर के हम यहां क्यों आ गए। और फिर पात्र ने जो समझाया था वो पात्र वो यहां है और दाता वो लवण समुद्र में है। अब वो पात्र याद आते हैं दाता को वहां जाने के बाद, हमको बाहर निकालो यहां से, तो पात्र कहता है मैं क्या करूं मैं वहां आ जाऊं तो निकाल सकता था, मैं तो यहां हूं अरे गड़बड़ तो आपके वजह से तो हुआ हमारा, हम यहां आ गए लवण समुद्र में। ऐसा हो जाता है। दाता को अज्ञानी नहीं रहना चाहिए, ये मुख्य, अन्यथा अपात्र के वजह से दाता का भी नुकसान और देने पर पात्र का भी नुकसान। पात्र क्या समझेगा कि मैं दान लेने योग्य हूं, ये समझ करके ले लेगा, और लेने योग्य नहीं है फिर भी ले लिया। और दाता क्या समझेगा, ये तो देने योग्य है, तो दाता दे देता है वो भी गलत फल पाता है, और पात्र ले लेता है वो भी गलत फल पाता है। इन दोनों को जब रिजल्ट सामने आता है तब जागृति आती है। अग्नि में अंगुली डालने पर ही एक बार तो जलना चाहिए, एक बार तो झटका लगना चाहिए, तब वो हाथ नहीं लगाता। शुरू शुरू में जब बिजली आई, करंट आया, वायर को लोग ऐसे ही छू लेते थे, पता नहीं रहता था कि वायर हमको झटका देगा, पर जब झटका देना पता लगने लगा तो वायर को छूना बंद कर दिया वायर को छूना बंद कर दिया। तो कुपात्र अपात्र में दान देने पर झटका लगता है, ये जिसको एक बार झटका लग जाए, अनुभव में आ जाए, तब वो सुधरने वाला है। वहां जाने के बाद जाति स्मरण भी हो सकता है, अवधि ज्ञान भी हो सकता है, तीन ज्ञान है। हाँ, को अवधि ज्ञान हो जाएगा या सो अवधि ज्ञान भी हो सकता है, मनुष्य पर्याय तो है, वो भी
हो सकता है,
अवधि ज्ञान हो सकता है।
होता है ऐसा निश्चित
है? हाँ होता है, नियम नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। कर्म का शोषण हो जाए तो हो जाएगा। तो भूमि दो प्रकार की, सुभोग भूमि और कुभोग भूमि। भूमि दो प्रकार की है, सुभोग भूमि और कुभोग भूमि। सुभोग भूमि में भी सम्यक दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, मनुष्य, तिर्यंच, तिर्यंचनी, स्त्री पुरुष, मनुष्य, तिर्यंच, तिर्यंचनी, मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं और सम्यक दृष्टि भी रहते हैं। सुभोग भूमि भी रहते हैं, कुभोग भूमि में भी सम्यक दृष्टि भी रहते हैं और मिथ्या दृष्टि भी रहते हैं। यहां अपात्र या कुपात्र में दान देने के पश्चात जो जीव जाकर के लवण समुद्र के अंतरद्वीप में जन्म लेता है, उसके पश्चात यदि उसको ज्ञान हो जाए कि ये यहां पर जन्म लेना ये इसका परिणाम है, फल है, और उससे उसको पश्चाताप हुआ, ज्ञान हुआ और ऐसा नहीं करना चाहिए कह करके सन्मार्ग का बोध हुआ और सम्यक दर्शन धारण कर लिया, तो फिर वह भविष्य में कभी भी ऐसी गलती नहीं करेगा। दुर्लभ, ऐसी गलती नहीं करेगा। तो ये हो गई चर्चा दान के फल की, पात्र की चर्चा हो गई। यहां पर एक बात और शेष रह गई कि तिर्यंच गति में भी जीव सम्यक दृष्टि है और मिथ्या दृष्टि भी है, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव एक इंद्रिय भी है, द्वि इंद्रिय भी है, तीन इंद्रिय भी है, चतुर इंद्रिय भी है, असंगी पंचेंद्रिय तक के सारे जीव एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय तक नियम से मिथ्या दृष्टि ही रहते हैं, इनको सम्यक दर्शन प्राप्त होना संभव नहीं है। त्रियंचों में संगी पंचेंद्रिय त्रियंचों को ही केवल सम्यक दर्शन हो सकता है, यदि प्राप्त करे तो हो सकता है, नहीं करे तो नहीं भी होता है। तो ऐसे त्रियंच प्राणी इस मध्य लोक में रहते हैं, अधोलोक में संगी पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं है, ऊर्ध्वलोक में संगी पंचेंद्रिय त्रियंच नहीं है, संगी पंचेंद्रिय त्रियंच केवल मध्यलोक में है। और यहां मध्यलोक में जो संगी पंचेंद्रिय त्रियंच हैं, और वे अनेक जगह हैं, कुभोग भूमि में है, सुभोग भूमि में है, म्लेच्छखंड में है, कर्म भूमि में है, कर्म भूमि के आर्य क्षेत्र में भी है और म्लेच्छखंड में भी है, सब जगह है। तो इन त्रियंचों में जो म्लेच्छखंड के त्रियंच होंगे उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, चाहे वो संगी पंचेंद्री भले ही हो। म्लेच्छखंड के मनुष्यों को और म्लेच्छखंड के त्रियंचों को सम्यक्त्व का लाभ नहीं होता, जन्म से लेकर मरण तक वहां पर एक ही गुणस्थान, प्रथम गुणस्थान रहता है, प्रथम गुणस्थान रहता है। अब कर्म भूमि के त्रियंच यानी यहां आर्यखंड के त्रियंचों को सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो सकती है। तो यहां सम्यक दर्शन किसी त्रियंच प्राणी को हो गया, चौथा गुणस्थान, और एक गुणस्थान बढ़ गया तो पांचवा, छठा गुणस्थान तो होने वाला नहीं है।
चक्रवर्ती का
तो एक में इतना हो गया, क्या हो गया? त्रियंच एक गुणस्थान और बढ़ गया तो पांचवा गुणस्थान हो गया। अब त्रियंच प्राणी को भी लेकर के ये ग्रंथों में व्याख्यान आता है कि त्रियंच प्राणी भी तीन सुपात्रों में दान देने का, दान देने के लिए योग्य होता है, दाता होता है। हाँ, तीन सुपात्रों में अनुमोदना से दान देता है, अनुमोदना से। हाँ भो, हाँ अनुमोदना से, अनुमोदना दिया था। हाँ तो केवल मनुष्य ही दान देते ऐसा नहीं, दान देने वाला दाता त्रिरंच भी होता है अनुमोदना से। तो कोई त्रिरंच ऐसा भी होता है, दान तो देता नहीं पर दान की वस्तु को दे सकता है, वो भी अनुमोदना हो जाएगी।
दान
दे नहीं सकता है ना, दान की वस्तु देता है। वही तो बता रहे, सुनो सुनो क्या विषय चल रहा है। त्रिरंच दान दाता तो है क्या नहीं है, तो दान देने का मतलब होता है जो सुपात्र है या मध्यम पात्र है, जगनी पात्र है, सुपात्र है, इनका आहार अच्छा हो, इतना कहना भी अनुमोदना है। त्रिरंच आपको दे सकता है क्या, कोई बंदर है, मुनि महाराज उसके हाथ से आहार लेंगे, देना चाहिए तो उसकी इच्छा है, मुझे भी एक ग्रास देना है।
इच्छा कर सकता है वो,
इच्छा कर सकता है, परंतु काया से कृतकारित
महाराज नहीं लेंगे, वो आ भी सकता है, महाराज लेंगे नहीं लेंगे। हाँ, अंतराय हो जाएगा,
अंतराय हो जाएगा। त्रिरंच अगर स्पर्श करता है तो अंतराय हो जाएगा, लेकिन अंतराय होता है इसके बावजूद भी त्रिरंच दान का अधिकारी है। तो किस टाइप से अधिकारी है, अनुमोदना से अधिकारी है, अनुमोदना पूर्वक वह अधिकारी है, दान देने का अधिकारी वो भी है। तो मान के चलो कोई त्रिरंच प्राणी चौथा गुणस्थान का है और उसने सुपात्र तीन सुपात्रों में से किसी भी एक पात्र को या सभी पात्र को दान दिया, तो दान देने वाला वह त्रिरंच देवगति में जाए जाएगा ही, क्योंकि सम्यक दृष्टि है, देवगति में वैमानिक देव बनेगा। और ज्यादा से ज्यादा वह कौन से स्वर्ग तक जाएगा, तो कहते हैं यदि चौथा सनन हो तो वह सोलहवें स्वर्ग तक जाएगा, यदि पांचवा सनन हो तो वह बारहवें स्वर्ग तक जाएगा, और यदि छठा सनन हो तो वह आठवें स्वर्ग तक जाएगा स्वर्गों में, सम्यक दृष्टि है, सम्यक दृष्टि है। और यदि वही त्रिरंच यदि पहले गुणस्थान में है और दान दे रहा है, सुपात्रों में दान दे रहा है, तो देवगति में जाए तो वैमानिक देवों में जाएगा, त्रिरंच गति में जाए तो शुभो भूमि के त्रिरंच बनेगा, कुभो भूमि में नहीं जाएगा, और मनुष्य बनेगा तो शुभो भूमि का मनुष्य बनेगा, कुभो भूमि का मनुष्य नहीं बनता। इस मिथ्या दृष्टि त्रिरंच के लिए और मिथ्या दृष्टि मनुष्य जीव के लिए, इन दोनों के लिए बताया। यदि ये मिथ्या दृष्टि है तो इनको बराबर भौतिक स्थान, भौतिक योनि जो होगी वो सुखमय योनि रहेगी, मिथ्या दृष्टि हो या सम्यक दृष्टि हो, शुभ भूमि या देवगति, कुभ भूमि नहीं रहेगी। परंतु मिथ्या दृष्टि हो तो कुपात्र में दान देगा और सुपात्र में भी देगा, दोनों तरफ देगा। अगर सम्यक दृष्टि हो तो वो मिथ्या दृष्टि वो कुपात्रों में दान देता ही नहीं हो। और किसी भी आगम में इस बात की चर्चा एक जगह भी नहीं आई, बहुत खोजा गया कि सम्यक दृष्टि दाता भी क्या कुपात्रों में कभी देता है क्या किसी प्रसंग में, तो इसका उल्लेख नहीं मिला, बहुत खोजा गया, इसका उल्लेख नहीं मिलता है। क्यों क्यों नहीं मिलता है, सम्यक दृष्टि विवेकी ही रहता है तो अविवेक का काम जानबूझकर क्यों करेगा, और अज्ञान पूर्वक करेगा तो अज्ञान पूर्वक कर सकता है, लेकिन अज्ञान है ही नहीं है ना। इसलिए सम्यक दृष्टि जीव तो कुपात्र अपात्र आदि में तो दान देता ही नहीं, तीन सुपात्रों में दान देता है।
एक काल्पनिक स्थिति में एक चौथे गोड़ स्थान या पांचवे गोड़ स्थान का त्रयंश असक्त है, उसकी सेवा, उसको आहार की मर्यादा एक मनुष्य भी कर सकता है और एक त्रयंश भी कर सकता है, दोनों उसके पास आहार पहुंचा सकते हैं, प्राप्त उसका आहार।
मैं वही बता रहा था कि कोई मान लो आपके यहाँ एक गाय पाल के रखा है और वो गाय दूध देती है और गाय संगी पंचेंद्री है, गाय जानती है कि सुपात्र अपात्र कुपात्र कौन है, उसको पूर्व भव के अगर संस्कार हो, अध्ययन हो, ज्ञान हो और त्रयंश अवस्था में यहाँ उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई हो, तो आप सुपात्र सुपात्र कहते हुए सुपात्र सुपात्र की परीक्षा तो करने की बुद्धि उसके पास इतनी नहीं रहेगी, वो तो बंधी हुई गाय है, पात्रों पात्रा पात्र की परीक्षा कैसे करेगी, परंतु उस वो भी दान अपने तरफ से वस्तु से देता है, कहां से लाएगा वस्तु, क्या देगा वो, दूध देगा, किसको देगा, अपने घर के मालिक को देगा, पर दूध देते समय उसके मन में ये आ गए
इस
ये हमारा दूध सुपात्र को भी मिले तो मैं धन्य हो जाऊंगी, ऐसा अगर गाय ने इतना भी परिणाम कर लिया तो धन्य हो गई वो। अगर वो मिथ्या दृष्टि भी हो तो शुभ भूमि में जाएगी, मनुष्य बने या त्रिरंश बने, शुभ भूमि का त्रिरंश मनुष्य बनेगी, और यदि सम्यक दृष्टि है तो नियम से वैमानिक देवों में जन्म लेगी, और चौथा सहनन हो तो सोलहवें स्वर्ग तक जाकर के वैमानिक देव बन के जन्म लेगी, अधिक से अधिक, यानी पहले स्वर्ग से लेकर सोलहवें स्वर्ग तक के किसी भी स्वर्ग में जन्म ले सकती है, ऐसा भी नहीं लेना कि वो सोलहवें स्वर्ग में ही जाती, ऐसा भी नहीं लेना, पहले स्वर्ग से लेकर सोलहवें स्वर्ग तक कहीं भी उत्पन्न हो सकती है, जा सकती गाय। और जो गाय दूध ही नहीं देती और सुपात्रों में केवल भावन से अनुमोदना करती है तो वो गाय भी जाती है सोलहवें स्वर्ग तक, दूध दे या न दे तो भी जाती है, ये भाव है, ये भाव ऐसे कैसे हो सकते हैं आप विचार करेंगे, इस ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि गाय को सुपात्र में दान देने के भाव होते हैं, ये असंभव बात नहीं, बल्कि आप उदाहरण पूर्वक ये दे सकते हैं, कोई चिड़िया या कोई गाय या कोई भी प्राणी अपने बच्चों को जन्म देने के बाद वो जब तक बड़ा नहीं होता तब तक कहीं से भी कुछ ला करके खिला करके बड़ा कराता है कि नहीं, चिड़िया को भी देख लो आप, वो अंडा रखती है, अंडा रखने के बाद कई दिन तक उस पर बैठती है, बैठने के बाद बच्चा जन्म लेता है और बच्चा जन्म लेने के बाद अगर वो खाने के योग्य हो गया तो वो जब तक बड़ा नहीं होता बार बार जाती है और बार बार आहार ला करके खिलाती, बार बार जाती है, जब अपने बच्चों को इतना पालन करने की बुद्धि है और इंजीनियर बनकर के घोंसला बना सकती है, मनुष्य नहीं बना सकता इस घोंसले को,
भिन्न भिन्न प्रकार,
हाँ भिन्न भिन्न प्रकार के घोंसले अपने चोंच से चोंच में से एक ही रेशे लेकर के कहीं ज्वार की कहीं गन्ने के रेशे को लेकर के आती है और घोंसला बना देती है, उसमें जाकर अंडा दे देती है। ये संगी पंचेंद्री है, ये संगी पंचेंद्री इतनी कलाकार, एक पक्षी इतना सब कुछ कर सकता है तो क्या वो सम्यक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता,
हिंसक पशु, हिंसक पशु,
हाँ हिंसक है, उसका आहार ही वो है, और चिड़िया को जन्म लेने के बाद वो दाना नहीं खिलाती,
कीड़े
उसको मुलायम मुलायम कीड़े केचवे हैं अली है और उड़ने वाले जो चौरिंद्री कीटाणु रहते हैं उनको है, पकड़ पकड़ के रहती है और खिलाती, पकड़ पकड़ के रहती है खिलाती है, इसको आंखों से देखा एक बार यहीं पर पिछले गांव में मोडलिम में, तो दो चिड़िया थी, वही एक चिड़ी और एक चिड़िया वो दोनों आते थे खिलाने के लिए, अपने अपने मुंह में ला करके दो बच्चे, दो अंडे थे उसके, दो बच्चे थे, और वो दोनों एक के बाद एक, एक के बाद एक खिलाने के लिए आते थे। अब वो आते ही ऊंचू 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 इतना मुंह फाड़ करके, इतना मुंह फाड़ करके, और वो ला करके ऐसे मुंह में डाल करके बैठ, फिर लाने के लिए। तो इस तो इतना विज्ञान है, तो ये संगी पंचेंद्री जीव है, इसको क्या सम्यक दर्शन आदि प्राप्त नहीं हो सकता? ऐसा कोई हो सकता है क्या? भगवान ने कहा है ऐसे पक्षियों को, ऐसे संगी पंचेंद्री चौपाय पशुओं को, सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, सम्यक दर्शन उसको नहीं होगा जिसको वो है, मतलब असंगी पंचेंद्री है, जैसे कि चिपकली आदि, गिरगिट। गिरगिट को क्या बोलते हैं हिंदी मराठी में? सरडा। गिरगिट है, चिपकली है, ये कुछ जो प्राणी पंचेंद्री हैं, आंख है, कान है, सब है इनको, परंतु मन न होने से इनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, इनमें इतना विवेक नहीं पाया जाता। सम्यक दृष्टि विवेकी होता है और मिथ्या दृष्टि जीव अविवेकी होता है, विवेक जगा नहीं पाता। जहां विवेक ज्ञान होता है वहीं सम्यक तो पाया जाता है, और जहां विवेक ज्ञान नहीं होता वहां सम्यक दर्शन भी नहीं होता। तो पंचम, एक बात और, दो मिनट में गुणस्थानों की चर्चा हो गई, चौथा गुणस्थान और पंचम गुणस्थान और छठा गुणस्थान। छठे गुणस्थान वाले तो नियम से पात्र ही होते हैं, वे दाता नहीं होते। पंचम गुणस्थान वाले जीव दाता भी होते हैं और पात्र भी होते हैं, मध्यम पात्र। और चौथे गुणस्थान वर्ती भी दाता भी होते हैं और पात्र भी होते हैं। और चौथे गुणस्थान वर्ती पात्र तीनों सुपात्रों में दान देते हैं। पंचम गुणस्थान वर्ती दाता तीनों सुपात्रों में दान देते हैं, किंतु ये दो गुणस्थान वाले कुपात्र और अपात्रों में दान देते नहीं, क्योंकि विवेकी है। जहां विवेक होता है गलत कार्य नहीं होते, ये नियम है। यही कारण है कि किसी भी ग्रंथ शास्त्रों में ये दो गुणस्थान वाले चौथा और पंचम, ये कुपात्र या अपात्रों में दान देते हैं, ऐसा उदाहरण ही नहीं मिलते। और यदि मिलते हैं तो इस प्रकार से मिलते हैं, जो अपात्र है, गुणों से कम है, उन गुणों को देख करके, दोष को भी देख करके स्थितिकरण करने के उद्देश्य से नमस्कार, विनय, नवदा भक्ति इत्यादि करते हैं और स्थितिकरण करके उनको मार्ग पर लगा देते हैं, तो उसको पात्र बना करके आहार देते हैं। पात्र बनाए बिना, स्थितिकरण किए बिना आहार दान देने का कोई विधान आगम में नहीं मिलता। ये हो गई डिटेल चर्चा, इससे चर्चा ज्यादा क्या चाहिए? एकदम डिटेल चर्चा।
संगीत पंचेंद्री जैसे दानानुमोदना, श्रावक भी जस दानानुमोदना करते हैं, तो वही फल मिलेगा उनको?
नहीं, देखो, अनुमोदना का फल त्रिरंशों को मिलता है। त्रिरंश क्योंकि वस्तु दे नहीं सकते, देने योग्य भी होते हैं और नहीं देने भी योग्य भी होते हैं। नहीं देने योग्य त्रिरंशों को अनुमोदना कहा, परंतु मनुष्यों को कहीं भी अनुमोदना से फल मिलता है ऐसा नहीं कहते। मनुष्य तो बुद्धिजीवी है ना, त्रिरंशों से ज्यादा। नहीं, मनुष्य मनुष्य देखो स्वयं खाता है, तो स्वयं का ही भोजन तो उसमें से एक ग्रास देना है या 5% देना है, ज्यादा से ज्यादा 10% देना है। तो खुद भोजन, सुनो सुनो सुनो, खुद भोजन करते हैं तो उसमें से ही तो देना है, क्या करना है, परंतु कहां देना है ये विवेक होना चाहिए। ये विवेक होना चाहिए। इसलिए अनुमोदना की जरूरत नहीं है आपको। जैसे मान लो आप सूतक पर हैं, तो सूतक न होने के कारण से तो अनुमोदना के पात्र हैं, परंतु जब आप स्वयं खा रहे हैं, शुद्ध हैं, पात्रता है देने की, योग्यता है, तब भी आप अनुमोदना कर रहे हैं, आहार ठीक हो, तब भी आप ये ग्रास देने के लिए पहुंच गए कि हमारी तरफ से अनुमोदना हो जाएगा जरा देने से और फल लग जाएगा। ऐसा नहीं होता। अपनी वस्तु को हम खा रहे हैं तो उसमें से एक ग्रास भी देते हैं तो फल लगेगा ही, अनुमोदना का निषेध। यदि स्वस्थ व्यक्तियों को भी, स्वस्थ लोगों को भी अनुमोदना देने से फल लगता है ये कहेंगे तो सभी यही विचार करेंगे, अरे वो तो अनुमोदना से भी लगता है, चुपचाप रहो। अनुमोदना से भी फल लगता है, आप चुप रहो, महाराज को जाने दो, महाराज का आहार ठीक हो, महाराज का आहार ठीक हो, पड़गाना नहीं उनको, अनुमोदना करते रहो, महाराज का आहार ठीक हो। तो सभी लोग केवल अनुमोदना से हाथ जोड़ करके खड़े रहेंगे तो फल लग जाएगा, सबको फल लग जाएगा। तो ये विधान है कि स्वस्थ लोगों को देना ही चाहिए, अपनी वस्तु से दान देना चाहिए, अपनी वस्तु महत्वपूर्ण है और वह निर्दोष हो, औद्देशिक आदि दोषों से रहित हो, ये महत्वपूर्ण है, तो वह निर्दोष दान कहलाता है। ये क्या क्या शंका?
भगवान को अर्घ्य चढ़ाते हैं ना, हम चढ़ाए तो दूसरे लोग हाथ लगे, वो अनुमोदन।
हाँ,
अब चढ़ा रहे, दूसरे भी आ रहे, तीसरे भी आ रहे,
अब दान में ही अनुमोदना करने लग गए तो उसको छोड़ेंगे क्या? उसमें भी जरा लगे ये भी भाव आएंगे ना, उसमें भी नहीं करना चाहिए, अपना ही द्रव्य होना चाहिए। अपना द्रव्य से ही वो होता है।